के भट्टी के दूसरे दिवस के इस सायंकालीन सत्र में हम सब के बीच उषा बहन पधारे हैं। नेपाल एवं दिल्ली के भाई बहनों के इस संगठन में उषा दीदी हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज का आपका विषय रहेगा वर्तमान परिस्थिति के समय स्वस्थिति एवं अवस्था की सुरक्षा। उषा बहन को आप रामायण महाभारत गीता के ज्ञान के संदर्भ में अच्छी तरह से जानते हैं। पुराने जो भाई बहने हैं वो सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप कोर्स और मैनेजमेंट के अलग अलग पहलू को स्पष्ट करते हुए भी आपने उषा बहन को देखा होगा। और जब बाप दादा मिलन में आते हैं तब स्पेशल बाप दादा मिलन के अगले दिन अथवा तो बीच में कहीं पर भी लेटेस्ट मुरलियों का मनन चिंतन हम सब ने उषा बहन से सुना है। बाबा के ज्ञान का न सिर्फ मनन चिंतन परंतु उसके साथ साथ उसको रचनात्मकता से और नवीनता से कैसे समझना और समझाना यह आपकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। बाल्यकाल में आपने अफ्रीका से बाबा का ये ज्ञान परिवार से ही प्राप्त किया। 1980 से 1980 से आपने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया। शुरुआत के थोड़े वर्ष मुंबई और हैदराबाद में आपने अपनी सेवाएं दी। जब 1985 की पदयात्राएं रही तब मुंबई से दिल्ली तक की पदयात्रा में आप लीडर के रूप में आपने अपना रोल प्ले किया और उसके बाद हमारे मुख्यालय माउंट आबू और आबू में रहकर आपने मैनेजमेंट कोर्स और उसके साथ जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के डिस्कोर्स और उसके साथ साथ राजयोग शिविर में विशेष अपनी विशेषता का लाभ जनमानस को दिया। आप पॉलिटिकल विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। प्रखर वक्ता, अनुभवी वक्ता और मनन चिंतन और योग जिनके जीवन का एक भाग है ऐसी उषा बहन आज हम सबको विशेष हमारी अवस्था और हमारी स्थिति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम आवश्यक बातें भी समझाएंगी और उसके पश्चात हमें योग के लिए भी मार्गदर्शन देंगी और गाइडेड मेडिटेशन भी कराएंगी।
मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा
तो थोड़ा योग करा के आप जाएंगे, लेकिन आज हम जो सुनेंगे, कल हमने अचल अडोल एकरस अवस्था के बारे में सुना, आज हम उस अवस्था के मेंटेनेंस, कल रात को मेंटेनेंस की बात हुई थी तो उसको मेंटेन कैसे किया जाए, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, उस बात को आदरणीय उषा बहन से समझेंगे।
ओम शांति। वर्तमान समय। बाबा के अनेक साकार मुरली और अव्यक्त मुरलियों में हम हमेशा कुछ न कुछ विशेष प्रेरणाएं प्राप्त करते रहते हैं और साथ ही साथ समय को देखते हुए भी आवश्यकता महसूस होती है कि हमें अपनी स्थिति की संभाल करनी है। जैसे जैसे अंतिम समय की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, नेचुरल है कि अनेक परिस्थिति तो आएगी ही, लेकिन अपनी स्थिति को हिलाने वाली बातें भी आएगी। और इसीलिए स्थिति की सुरक्षा कैसे करें? कोई दूसरा हमारी स्थिति की रक्षा नहीं कर सकता है, हमें खुद ही अपनी स्थिति की स्वरक्षा करनी होगी। क्योंकि अगर हम स्वरक्षक बन सकते हैं तो ही हम यज्ञ रक्षक भी बन सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वरक्षक ही न बने तो यज्ञ तो इतना विशाल है, यज्ञ रक्षक कैसे बन सकेंगे? बातें अनेक आएगी, अनेक तरफ से पेपर आएंगे, ये भी हम जानते हैं। और इसीलिए उसका सॉल्यूशन अपने पास अगर है तो अच्छी तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। तो मुख्य रूप से पांच बातें हम आपको बताएंगे इसमें स्वरक्षा के लिए। पहली मुख्य बात है कि हमारी रक्षा किससे करें, किससे करना चाहिए, किससे करनी चाहिए रक्षा। स्थूल में जो बातें आएंगी उससे भी ज्यादा अधिक सूक्ष्म में जो बातें आती है उससे रक्षा अपनी पहली आवश्यकता है। तो सबसे पहले अटैक जो होता है देह अभिमान का अटैक होता है। कब आ जाता है, कब घुस जाता है, कब वो मैपन की फीलिंग में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और इसलिए जब मैपन की फीलिंग में अगर आ गए और उसके आधार पर बातचीत भी करने लगे अभिमानवश, तो संभावना ये रहती है कि सामने वाला दो शब्द हमें भी कह सकता है। और अगर अभिमानवश बात किया तो नेचुरल अपमान की फीलिंग भी आएगी। तो सबसे पहली हमारी अवस्था की सुरक्षा करनी है अभिमान और अपमान से। क्योंकि अगर ये फीलिंग आ गई या अपमान की या अभिमान की तो स्थिति डाउन होना स्वाभाविक है, बहुत हलचल में आ सकते हैं। उसमें भी खास करके किसी ने अपमान कर दिया तो अंदर में तूफान चालू हो जाएगा, क्यों किया उसने ऐसा, क्या समझता है। और फिर हम भी कभी कभी अगर उसके वश हो गए, उस फीलिंग के वश हो गए तो कहीं रॉन्ग कदम न उठा ले जो और भी भारी पड़ सकता है। इसीलिए अभिमान और अपमान की फीलिंग से अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपनी स्थिति की सुरक्षा करने के लिए स्वमान बाबा ने इतने अच्छे अच्छे दिए हैं। और बाबा हमेशा ये कहते हैं स्वमान के शुद्ध नशे में आप रहो। जितना शुद्ध नशा स्वमान का होगा तो नेचुरल है हरेक के साथ जो हमारी बातचीत होगी अभिमान वश नहीं होगी, सम्मान वश होगी। और किसी को भी सम्मान देते हुए बातचीत करते हैं तो वहां अपमान मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप में ये अभ्यास करना है। विशेष भट्टी में तो अभ्यास करते ही है कि रोज सुबह सुबह आपको एक बहुत सुंदर स्वमान मिल ही जाता है, लेकिन भट्टी से जाने के बाद भी ये एक प्रैक्टिस अपने अंदर बना ले कि वहां जाने के बाद भी हम स्वमान का निरंतर अभ्यास करते रहे। हर रोज बाबा की मुरली में वरदान के रूप में, स्लोगन के रूप में हमें कोई ना कोई स्वमान मिलता ही है, तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि अभी कौन सा स्वमान हम ले, आज कौन सा स्वमान ले, बाबा की मुरली से स्वमान मिल जाता है। चाहे वरदान रूप में मिला हो, चाहे स्लोगन रूप में बाबा देता हो, तो इसीलिए जब उस स्वमान में अपने मन को स्थित करके देखो तो नेचुरली कोई भी व्यक्ति आएंगे तो हमारी बातचीत सम्मान पूर्वक होगी, और जहां सम्मान देते हैं तो सम्मान मिलेगा भी जरूर। तो इसीलिए बाबा कहे न अभिमान वश किसी का अपमान हम करें जो दूसरा भी हमारा अपमान कर ले। तो ये सबसे पहली अभ्यास की बात है, स्वमान में स्थित रहने का निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। दूसरी बात कि जो हमारी स्थिति की सुरक्षा रखने की है, स्वचिंतन से, क्योंकि दिन प्रतिदिन माहौल ऐसा बनता जाएगा पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन ये बढ़ता जाएगा, इसलिए उससे भी हमें अपनी स्थिति की सुरक्षा रखनी है कि पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में न आए, व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन के भी प्रभाव में न आए, क्योंकि दिन प्रतिदिन वातावरण ऐसा बनता जा रहा है। दुनिया के अंदर आप देखो कितना लोग व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में रहते हैं, और उसके कारण उनकी स्थिति कैसी हो रही है, दया भी आती है उनको देखते हुए। जब कोई डिप्रेशन के शिकार वाले व्यक्ति को देखते हैं तो अंदर में क्या आता है, बाबा ने हमें कितना सुंदर चिंतन दिया है। तो ज्ञान के मनन चिंतन के अभ्यास को बढ़ाना है, जितना ज्ञान के मनन चिंतन का अभ्यास बढ़ाते हैं, स्वचिंतन करते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, पॉजिटिव चिंतन करते हैं, सकारात्मक, उससे हमारी स्थिति के आसपास एक ओरा क्रिएट होगा। पॉजिटिव वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं ना, जब भी हम पॉजिटिव चिंतन करते, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो ज्ञान के मनन चिंतन से क्या होता है कि हमारे चारों ओर वाइब्रेशन पॉजिटिव बनने लगते हैं, जिसको दूसरे शब्द में कहे तो एक ओरा क्रिएट होता है, पॉजिटिव एनर्जी का ओरा, एक प्रभा मंडल हमारे आसपास बनने लगता है, जैसे देवी देवताओं के आसपास एक प्रभा मंडल दिखाते हैं। वो इसीलिए दिखाते हैं कि उनका कितना शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन था, इसीलिए उनके आसपास ये हो रहा है। तो आज की दुनिया के अंदर सुरक्षित रहने के लिए, ताकि ये नेगेटिविटी के वाइब्रेशन हमें स्पर्श न करे, ये व्यर्थ चिंतन के वाइब्रेशन हमें स्पर्श न करे, वो नेगेटिविटी का कोई भी बाण हमारी स्थिति तक न पहुंचे, उसके लिए हमें अपने आसपास ये पॉजिटिविटी का ओरा तैयार करने की बहुत आवश्यकता है। ये हमारी स्थिति को सुरक्षित रखेगा, जिसके लिए बाबा कई बार मुरलियों में हमें ये इशारा दे चुके हैं कि बच्चे अंतिम समय आत्माएं ऐसी आएगी आपके पास में, इतने मेंटली डिस्टर्ब्ड होंगी क्योंकि उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति, ऐसे हादसे होंगे, तो वो इतने मेंटली डिस्टर्ब होकर के आपके पास आएंगी एक अंचली प्राप्त करने के लिए, तो उस समय हमारी मेंटल स्टेज कैसी होनी चाहिए, कितनी पावरफुल हो ताकि हम उसको कुछ अंचली तो दे सके। ये ना कहना पड़े अरे मेरे पास तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, ये मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, ये ना कहना पड़े। तो जितनी हमारी पॉजिटिविटी की एनर्जी ज्यादा होगी, उतने ये नेगेटिव एनवायरनमेंट में हम बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जितना नीचे में आ जाएंगे, स्थिति अगर नीचे ग्राउंडेड होंगी तो बहुत सारी बातें इफेक्ट करेगी हमें। खाली मनुष्य के वाइब्रेशंस इफेक्ट करे इतना नहीं, परिस्थिति के हालातों के वाइब्रेशन भी हमारी स्थिति को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जितना हम अपनी स्थिति को ऊपर उठाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस करते हुए जितनी हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का ओरा होगा, उतना उन सब के बीच में रहते हुए भी मैं बहुत सुंदर रीति से अपने जीवन के वाइब्रेशंस के द्वारा दूसरों की भी सेवा के निमित्त बन सकती हूँ। विचलित होने के बजाय जितना अंदर में एक स्टेबिलिटी हमारे अंदर बनेगी, उतना ही हम दूसरों को भी आथत दे सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अंतिम समय ऐसे नजारे आपके सामने आएंगे, है ना, ऐसे ऐसे नजारे सामने आएंगे कि उस समय मनुष्य के अंदर एक ऐसे डिप्रेशन होगा, कभी कभी बहुत डिस्टर्ब्ड होंगे और उस डिस्टर्बेंस के कारण वो कुछ भी हिंसात्मक करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसे समय पर आपको उनको आथत देनी होगी, धैर्यता बनानी होगी खुद के अंदर भी उनके अंदर भी। तो आप समझो कि जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन, आत्मचिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन करेंगे, उतनी हमारे अंदर क्या होगा, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी विकसित होगी। और ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, दुनिया में भी कहते हैं कि जो मैच्योर व्यक्ति होता है वो जल्दी हलचल में नहीं आता है, और ये जो हलचल वाले हैं वो उनको हिलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी वाले बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते, कोई बात नहीं हो जाएगा, सांत्वना देते हैं, धैर्यता बंधाते हैं हमारे अंदर। लेकिन ये कब होगा, जब इतना ज्ञान को हजम किया होगा, अपनी अवस्था को परिपक्व बनाया होगा, तब जाकर के हम उनको भी आथत दे सकेंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, उनके स्थिति का असर प्रभाव इतना हमारे पर पड़ेगा जो हम भी हलचल में आ जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से ही ज्ञान जो इतना सुनते हैं, ज्ञान सुन सुन करके अपने अंदर उसको हजम करते हुए अपनी स्थिति को परिपक्व बनाना है, यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जरूर हमारे अंदर आनी चाहिए, तब हम अपनी स्थिति की भी सुरक्षा कर सकते हैं और उनको भी धैर्यवत हो करके रिएक्टिव होने के बजाय वो कुछ भी उलट पुलट करें, लेकिन उस समय व्यक्ति कभी कभी आवेश में आ जाता है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में नहीं होता है, तो उस वक्त क्या होगा, उसकी हरकतों को देख करके कहीं हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी अपसेट हो जाते हैं, या हम भी ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं, बाद में सोचते हैं नहीं करते थे तो अच्छा होता था, लेकिन उस समय क्योंकि वो परिपक्वता नहीं थी, इसीलिए उसने थोड़ा सा छेड़ा और हम आवेश में आ गए, ऐसा होता है। बाबा की कुछ दिन पहले की मुरली मुझे याद आती है कि बाबा कहते कई बच्चे संकल्प करते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना है और 5 मिनट के बाद गुस्सा आ जाता है, तो क्यों ये लंबा समय नहीं चलता है, क्योंकि शायद हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को विकसित नहीं किया इसीलिए। तो इसीलिए उस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को विकसित करना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब उस ज्ञान को हजम करेंगे। ज्ञान मिल रहा है, लेकिन उसको बाद में शांति से बैठ करके उसके ऊपर मनन चिंतन करके उसको हजम करना बहुत जरूरी है, तब वो आत्मा की ताकत बनती है, आत्मा की शक्ति बनेगी। ज्ञान शक्ति है, जैसे कहते हैं भोजन में ताकत मिलती है शरीर को, स्थूल भोजन से शरीर को ताकत मिलती है, लेकिन कब? हजम करो तो। अगर वो हजम ही नहीं हुआ तो ताकत कहां से होगी? खाया, इनडाइजेशन हुआ, इनडाइजेशन के कारण वॉमिटिंग हुआ, और भी वीकनेस आ जाएंगी, ताकत कहां बनी? तो ताकत बनाने के लिए तो उसको हजम करना पड़ता है, और हजम करने के लिए हजम कैसे होता है? भोजन जो खाते वो हजम कैसे करते हैं? रेस्ट, शरीर को विश्राम उस समय, इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि का काम भी ना करो, रेस्ट, क्योंकि सारी एनर्जी पेट के पास लगती है ताकि वो हजम कर सके खाने को। उस समय अगर कोई मेंटल कार्य करना शुरू करे, इसीलिए कहते खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करो, दिन में भी थोड़ा रेस्ट क्यों देते हैं? ताकि वो एनर्जी पेट में जो खाना है उसको हजम करने में लगता है। जब आराम करते हैं और सुबह उठते हैं तो फ्रेश ताकत आ गई। कैसे ताकत आई? वो खाना हजम हो गया इसलिए ताकत आई, लेकिन अगर हजम नहीं हुआ तो ताकत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। ठीक इसी तरह ज्ञान इतना शक्तिशाली भोजन है, लेकिन उसके बाद ज्ञान सुनने के बाद रेस्ट, रेस्ट माना योग, मेडिटेशन, मेडिटेशन माना बुद्धि को आराम, साइलेंस में ले जाना। जब बुद्धि को आराम मिलता है तब जाकर के उसके अंदर ताकत आती है, वो परिपक्वता आती है। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस जीवन में जरूरी है, है ना? तभी आत्मा में शक्ति भर सकती है। तो स्वचिंतन, शुभ चिंतन, सकारात्मक चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन, ये आत्मा की स्थिति की सुरक्षा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तीसरी बात, हमारी स्थिति की सुरक्षा होती है संयम, नियम और मर्यादाएं। जो बाबा ने हमें संयम, नियम और मर्यादाएं दी है, ये संयम, नियम और मर्यादा हमारी स्थिति की सुरक्षा के लिए बाबा ने दिया है। अमृत वेले से रात्रि तक हर श्रीमत जो हमें मिली है, ये श्रीमत है ही हमारी स्थिति की सुरक्षा के लिए। आप लोग खुद ही महसूस करते होंगे कि जिस दिन मान लो आपका अमृत वेला मिस हो जाए, सारा दिन कैसा जाता है? कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता रहेगा। मना उस दिन अमृत वेला ताकत नहीं मिली तो भी सारा दिन हमारा अच्छा नहीं जाता है, हमारी स्थिति हलचल में आती रहती है। फिर क्या कहते हैं, महसूस भी करते हैं, आज अमृत वेला नहीं हुआ ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है, इतना अप्स एंड डाउन। जिस दिन अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ, कितनी बड़े से बड़ी बातें आती है तो भी उसको हैंडल करने की ताकत आती है। तो जो बाबा ने हमें संयम, नियम और मर्यादाएं ये जो दिया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और राज ये है कि अंतिम समय ये हमारी स्थिति को कभी हलचल में आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो ताकत आत्मा को मिलती है, ये संयम और नियम से मिलती है। दुनिया में भी देखो, किसी के अंदर विल पावर लाने के लिए अक्सर लोग उपवास करते हैं। उपवास करने से, एक दिन भी उपवास करते तो बहुत विल पावर बढ़ता है। तो एक संयम जो लेते हैं कि भाई हर गुरुवार को उपवास करना, या हर शनिवार को उपवास करना, है ना, एक दिन का संयम भी जब लेते हैं उसमें भी अपने आप को बांधते हैं तो कितना व्यक्ति का विल पावर बढ़ता है। तो ये संयम जो बाबा ने हमें दिए, ये नियम, ये हमारे कल्याण के लिए बाबा ने दिए, क्योंकि अगर ये संयम नियम नहीं है, जीवन के अंदर कोई माना रूल्स ही नहीं हमने रखे, कोई भी प्रकार की हमारी यही नहीं है जीवन के अंदर, बस जैसे आया वैसे खाया, जैसे आया वैसे चले, जैसे आया वैसे, तो उसको क्या कहेंगे? उसका जीवन का ना कोई आधार नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो स्टेबिलिटी तभी जीवन के अंदर आती है जब ये संयम नियम को आधार बना ले। मर्यादाएं बाबा ने इतनी सुंदर हमें दी है, क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम हम यहां बनते हैं क्योंकि देवता से भी श्रेष्ठ जन्म ब्राह्मणों का है। देवता तो फिर भी सर हो गया, नीचे उतर गए, लेकिन चोटी क्या है? ब्राह्मण चोटी है। तो देवताई जीवन इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम वाला है, त्रेता युग में भी श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन उसकी नींव कहाँ है? संगम पर है। तो इसीलिए देवताओं से भी श्रेष्ठ अगर ये जन्म है तो ये जन्म कितना मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए, बताओ? और अगर यहां मर्यादा पुरुषोत्तम हम नहीं बने तो फिर देवताई जीवन में तो क्या बनेंगे? नहीं बन सकेंगे। इसीलिए बाबा कुछ दिनों से मुरली चली, जो बाबा की पहले हफ्ता पहले की मुरलियां जो चली, बाबा ने रोज अजामिल जैसे पापात्माओं को याद किया। कितनी मुरली लगातार 15 दिन में समझती हूँ कि अजामिल जैसे पापात्माओं का भी उद्धार करने के लिए बाबा को आना पड़ता है। क्यों कहा ऐसे? क्योंकि मर्यादा नहीं। अजामिल के लिए कहा जाता है कि अजामिल पहले भक्त था, उसकी कहानी आप जानते हैं, बहुत बड़ा भक्त था, एक साधु का शिष्य था वो, और इसीलिए उसके घर में जब बेटे का जन्म हुआ तो वो साधु ने कहा तुम इसका नाम नारायण रखो, और उसने रखा नारायण। और नारायण नाम रखने के बाद फिर कहानी में ट्विस्ट आता है कि उसके बाद वो इतना पापात्मा भ्रष्टाचारी हो गया, इतना जैसे व्यभिचार उसके जीवन में आ गया और व्यभिचार करने लगा वो, और इसीलिए इतना पापात्मा बन गया, इतना गिर गया ना? विकारों के वश हो गया, वासनाओं के वश हो गया, और इतना ज्यादा गिर गया। और वो साधु सिद्ध व्यक्ति था, वो जानता था ये गिरने वाला है, इसीलिए उसने कहा तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखो ताकि तुम नारायण को पुकारो तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और सचमुच उसने अंतिम समय जब नारायण नारायण बुलाया अपने बेटे को, वो नारायण आ गया। अंत मते सुगति, इसीलिए बाबा भी कहते हैं अंत मते सुगति कैसी होनी चाहिए, अंतिम समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। ये तो एक कहानी शास्त्र में बता दी कैसे महान पाप आत्माओं का उद्धार भी भगवान करते हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं आकर के अजामिल जैसे पाप आत्माओं का भी उद्धार करता हूं। तो कैसे किया बाबा ने? उनको बांधा संयम और नियम मर्यादाओं में। तो संयम नियम मर्यादा में जब बंधता है व्यक्ति, प्रॉमिस करता है बाबा को, तो उसका उद्धार होगा या नहीं होगा? है ना, जरूर हो जाएगा। तो अंतिम समय की स्थिति हमारी कब बनेगी? कि जब हमने वो अभ्यास जीवन भर किया है, जब हमने वो अभ्यास में विशेष समय लगाया है, उसका कॉन्शियसली हमने अभ्यास किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वो प्रैक्टिस अंतिम समय हमें खींचेगी, प्रैक्टिस मैग्नेट बन जाएगा जो हमें खींचेगी उस तरफ, और सहजता से हम उस अभ्यास में समा जाएंगे। इसलिए बाबा ये अभ्यास कराता है अभी से। क्यों अभ्यास कराता है? ताकि आपको उस अभ्यास से जीवन की धारणाएं अपने आप श्रेष्ठ हो जाए। इसीलिए बाबा अभ्यास कराता है। कोई भी चीज का जब अभ्यास करते हैं ना, साइकोलॉजी भी ये बताती है कि एक व्यक्ति अगर लगातार कोई भी अभ्यास 21 दिन करता है, वो अभ्यास से उसका संस्कार बनता है। और जीवन शैली बनाने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है, ताकि वो हमारी जीवन शैली हो जाए, तो उसके लिए 90 दिन का अभ्यास बताते हैं कि 90 दिन कोई भी चीज आप जीवन शैली में ले आओ, वो आपकी जीवन शैली बन जाएगी। ये धर्म कहता है, धर्म कहता है 90 दिन चाहिए कोई भी जीवन शैली अपनाने के लिए। तो बाबा ने इसीलिए हमें इतनी ऊंची जीवन शैली दिया है, और इसीलिए बाबा का बनने के बाद जब उस चीज का अभ्यास करते जाते तो वो हमारे संस्कार बनने लगते हैं, और उस संस्कार से धीरे धीरे फिर हमारी जीवन शैली बनती है, और जीवन शैली ही उस और खींचेगी, ताकि अंतिम समय जब आए तो वो जीवन शैली हमें खींचे, वो संस्कार हमें खींचे, ताकि अंतिम समय कोई भी बात हमें विचलित न कर सके। इसीलिए जब भी किसी को योग के लिए भी अभ्यास बताते हैं तो क्या बताते हैं, 21 दिन का करो या 90 दिन का अभ्यास करो, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? ये साइकोलॉजी है, कि साइकोलॉजी का रूल है कि 21 दिन वो अभ्यास करने से आपका वो संस्कार बन जाएगा, और जितना वो संस्कार बन जाएगा उसके सामने पेपर आएंगे, लेकिन विल पावर इतना बढ़ जाएगा जो आप उस पेपर को बहुत सहजता से क्रॉस कर लेंगे। कई बार आपने अनुभव किया होगा जीवन में कि बाबा के बनने के बाद बड़े से बड़े पेपर भी बहुत सहजता से क्रॉस हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, है ना? और सोचते हैं बाद में कि अगर दुनिया में बाबा के नहीं बने होते थे ना, तो पता नहीं इस समय हमारी हालत क्या हो जाती थी। ये भी महसूस करते हैं कि बाबा के अगर बाबा का हाथ नहीं पकड़ा होता था तो पता नहीं हमारी हालत क्या होती थी। ये बाबा का हाथ पकड़ा तो जैसे इतना नेचुरल हो गया इस पेपर को पास करना, जैसे लगा ही नहीं कि पेपर आया है। महसूसता है कि नहीं? तो ये जो ऐसा, तो बाबा का हाथ पकड़ने से माना, बाबा का हाथ क्या है? संयम नियम मर्यादा श्रीमत रूपी तो हाथ है। संयम नियम मर्यादा और श्रीमत का जो हाथ पकड़ा है हमने, यानी ये हमारी जीवन शैली जो बनाई है, उसने ही हमारे अंदर इतना विल पावर को विकसित किया जो उसको क्रॉस करना हमें महसूस ही नहीं कि क्रॉस किया। दूसरे देखने वाले कहते हैं, अरे इतना बड़ा पेपर, हम आपकी जगह होते थे हमारे से तो नहीं होता था। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप लोग कैसे कर लेते हो? ये भी लोग महसूस करते हैं, जो आपके आसपास नजदीक में रहते हैं वो तो महसूस करते, कैसे आपने कर लिया? इतनी ताकत मिलती है अंदर में। और बाबा जानता है कि अंतिम समय इससे भी डबल ताकत चाहिए। ऐसे ऐसे पेपर एक साथ में आएंगे तो कितनी ताकत लगेगी? बहुत जबरदस्त ताकत लगेगी। इसीलिए अभी से उस संयम नियम मर्यादा और श्रीमत में कहीं पर भी क्या लूज नहीं होना है। जहां लूज हुए कोई बात नहीं, होता है, बस माया ने वहीं गला दबाना चालू कर देना है। स्वाभाविक है, माया जरूर पकड़ती है। इसलिए ये संयम नियम मर्यादा और श्रीमत, उसमें कहीं पर भी होता है चलता है, हाँ चलेगा, ये नहीं चलाओ। उसमें नुकसान किसका होता है? खुद का होगा और किसी का नहीं होगा, खुद का होगा। और जो पावर चाहिएगी ना, वो पावर उस समय आप खुद के अंदर महसूस नहीं कर पाएंगे। और बाबा की पावर को भी महसूस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा की पावर को महसूस करने के लिए भी पात्रता चाहिए। वो पात्रता भी अगर विकसित नहीं हुई, ये संयम नियम मर्यादा से ही तो वो पात्रता आएगी। अगर उसमें ढील छोड़ दी तो पात्रता विकसित नहीं होगी, तो बाबा की मदद को भी कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुनिया में जो कहा हुआ है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में। माना हमारे अंदर ये पात्रता बाबा के इस शक्ति को कैच करने की, ये पात्रता इसी बात के आधार पर तो आती है और उसी से हमारी स्थिति की सुरक्षा होती है। इसलिए पहला देखा स्वमान। स्वमान हमारी स्थिति की रक्षा करता अभिमान और अपमान से। दूसरा देखा स्वचिंतन, जो हमारी स्थिति की रक्षा करता है परचिंतन, व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन, पर दर्शन और पर मत से, पांच बातों से हमारी रक्षा करता है, हमारी स्थिति की रक्षा करता है। फिर तीसरा है संयम। सने से है सब कुछ, आप नोट करना। पहला स्वमान, दूसरा स्वचिंतन, तीसरा संयम, है ना, तीसरा स, चौथा स संतुलन। ज्ञान में चलना मतलब संतुलन से चलो, बैलेंस से चलो। बाबा भी हमेशा हमें कहते हैं बैलेंस से चलो तो सुरक्षित रहेंगे। जहां इम्बैलेंस किया वहां क्या होगा, माया आई, माया का आवाहन हो जाएगा। इसीलिए संतुलन, बाबा ने हर बात का संतुलन सिखाया। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा के जीवन में कितने संतुलन दिखाते हैं, गंभीरता और रमणीकता का संतुलन। बाबा रमणीक भी उतना ही था लेकिन गंभीर भी था, है ना। लव एंड लॉ का बैलेंस, बाबा लव एंड लॉ में चला। और इसी तरह हम अपनी दादियों को भी देखते हैं तो बैलेंस से चलती है, कभी भी कोई भी बात में अति नहीं होती है। जहां अति हो गई वहां समझ लेना इम्बैलेंस हो गया। वहां हर एक की शिकायत हमारे लिए जरूर आएगी, लोग भी कहेंगे आप इतना अति नहीं करो, बैलेंस से चलो जीवन के अंदर, है ना। तो बाबा ने भी हमें क्या सिखाया, बैलेंस सिखाया कि घर गृहस्थ में भी रहना है लेकिन आध्यात्मिकता का भी बैलेंस चाहिए। बताया कि नहीं बैलेंस, भौतिकता और आध्यात्मिकता का बैलेंस, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस सिखाया, सब बातों का, ज्ञान और योग का बैलेंस। ये भी बाबा कहते हैं, ये भी नहीं है, ज्ञान योग भी ठीक चले, सेवा भी ठीक चले, बैलेंस से चलो। ये भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा सेवा में चलते गए और परिवार का इम्बैलेंस हो गया, बहुत ज्यादा परिवार में हो गए और सेवा ज्ञान योग छूट गया, ये भी नहीं होना चाहिए। संतुलन, जहां संतुलन है, योग का मतलब ही है संतुलन। योग का मतलब क्या है, एक तो योग का मतलब बैलेंस, दूसरा योग का मतलब है प्रयोग। प्रयोग, योग माना प्रयोग करना, जो बाबा की ज्ञान की बातें हैं उसको जीवन के अंदर प्रयोग में लाना। जितना प्रयोग में उसको लाते जाएंगे, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता जाएगा, उतना लाइफ बैलेंस्ड होगी। अगर बैलेंस नहीं, दूरी ही खत्म हो गई तो पूरा ही ढांचा गिर जाएगा, ब्राह्मण जीवन का ढांचा भी गिर जाएगा। इसीलिए दुनिया में भी हम देखते हैं और इस ब्राह्मण परिवार में भी देखते हैं कि जो व्यक्ति बैलेंस से नहीं चला उसका हाथ माया कैसे भी करके छुड़ाने वाली है। इसीलिए संतुलन जीवन, आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो दुनिया भी हमें टोंट कसना चालू करेगी। आप आध्यात्मिक पथ पर जाते हैं ना, फिर बैलेंस नहीं है क्या? संतुलन बहुत जरूरी है। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का भी संतुलन चाहिए, लॉजिक एंड भावना का भी संतुलन चाहिए। दुनिया में भी आप देखेंगे जो अपने विवेक को यूज नहीं करता, बहुत ज्यादा भावना वाला होता है, वो भी धोखा खाता है। और बहुत ज्यादा विवेक चलाता है अपना तो अनुभव ही नहीं होता है, अनुभव की मात्रा खत्म, क्योंकि अनुभव करने के लिए भावना चाहिए। तो विवेक युक्त भावना बैलेंस बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी चीज में एक्सट्रीम में नहीं जाना, ये हमारा ज्ञान हमें सिखाता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि गृहस्थ जीवन की गाड़ी दो पहिए पर बहुत अच्छी चलती है, बैलेंस से चलती है। तो हमारे जीवन के अंदर भी ज्ञान योग के पहिए ठीक चलते हैं, स्वस्थिति और सेवा का पहिया ठीक चलता हो तो हमारी अवस्था की सुरक्षा रहेगी। अगर बैलेंस नहीं तो अवस्था खत्म। आज बहुत उड़ने जा रहे हैं, कल देखो तो जमीन पर रेंग रहे हैं। इसलिए पुरुषार्थ में ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना बैलेंस से चलेंगे बहुत अच्छा चलेगा, है ना? इसीलिए बाबा ने भी प्रैक्टिकल अपने जीवन से, मम्मा ने भी प्रैक्टिकल अपने जीवन से कर्म योगी बनना सिखाया। कर्म योगी बनो आप, है ना? और पांचवा सा साइलेंस, शांति। साइलेंस में चलो, है ना? यानी अगर कोई टकराना चाहता है, खुद साइलेंस, मुख में मुलरा डाल दो। बाबा क्या कहते हैं, मुख में मुलरा डाल देंगे वो कितनी देर बोलेगा? चुप हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आपके पास बहुत अच्छा हथियार है सब साइलेंस का। कोई बोलता रहे आप चुप रहो, वो बोल बोल करके चला जाएगा। ताली कब बजती है? और ताली बजेगी तो अवस्था क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी शक्ति दी है, साइलेंस की शक्ति। कोई समझता है अरे आप सहन क्यों करते, जवाब दे दो। सहन नहीं है, सहन भी अगर कर रहे हैं, अगर वो सहन करने वाला है तो भी मूर्ति ही बनती जा रही है। सहन शक्ति अगर है वो भी सो आ गया, सहन शक्ति भी अगर है साइलेंस में रहना, कोई समझता है सहन कर रहा है, सहन नहीं कर रहा है, मूर्ति बन रही है। भले छेनी हथौड़ी लग रही है, लेकिन छेनी हथौड़ी लगते लगते मूर्ति तो बन जाएगी। मूर्ति बन रही है तो सहन नहीं करना पड़ेगा, मूर्ति बन रही है तो सहन तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। लेकिन जितना साइलेंस में रह करके सहन करते जाएंगे उतना स्वीट साइलेंस का अनुभव होगा। डिटैच हो जाओ, साइलेंस माना सहन करना, साइलेंस माना डिटैच हो जाना, न्यारा प्यारा हो जाना। साइलेंस माना अंडरग्राउंड हो जाना। साइलेंस के बहुत मतलब है। साइलेंस माना ये नहीं कि चुप रहे लेकिन अंदर व्यर्थ चलाते रहे, ये साइलेंस नहीं है। साइलेंस माना स्वीट साइलेंस। साइलेंस माना बाबा के पास जाके बैठ जाओ, बुद्धि से बाबा के पास जाकर के बैठ जाओ, बाबा टेक ओवर कर लेगा, बाबा उसको संभाल लेगा, उस परिस्थिति को संभाल लेगा। मुझे बोलने की आवश्यकता, कई लोग कहते भाई 10 बार तो हम चुप रहते लेकिन 11वीं बार तो बोलना ही पड़ता है। 10 बार जो चुप रहे वो आपको पता है, आप चुप रहे, किसी को दिखाई देता है? चुप रहना दिखाई थोड़ी देता है। और 11वीं बार जो बोले वो 10 लोगों ने देखा तो क्या सोचते हैं? इतनी भी सहन शक्ति नहीं है अरे भगवान की मुरली रोज सुनते, इतना भी साइलेंस में रहने का ये नहीं है। छोटी सी तो बात थी, आप क्या कर, 10 बार हो गई ये बात। आप कहेंगे 10 बार हो गई हो ये तो पता नहीं, लेकिन ये इतनी छोटी बात पर जो आपका रिएक्शन हम देख रहे हैं ना, उससे पता चलता है 10 बार भी आपने सहन नहीं किया होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? तो 10 बार जो सहन किया वो दिखाई देता है, 11वीं बार जो बोला वो दिखाई देता है सबको, और लोगों को लगता है देखो ये ज्ञान में चल रहा है। शिव बाबा रोज करता है, ओम शांति करता है, और इतनी सहन शक्ति तो है नहीं उसके अंदर, क्या हुआ? गया पानी में सब, 10 बार जो सहन किया पानी में गया। इसीलिए बाबा कहते हैं साइलेंस में रहो, अंडरग्राउंड हो जाओ बाबा के। अच्छा अंडरग्राउंड नहीं होना था, बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा संभाल लेगा, न्यारे हो जाओ। साइलेंस माना न्यारे हो जाओ, साइलेंस माना स्वीट साइलेंस में उसको शुभ भावना का दान देते जाओ। उस समय भले आप बोलो नहीं, लेकिन शुभ भावना, स्वीट साइलेंस माना है उसको स्वीट वाइब्रेशंस दो, बहुत प्यार भरे वाइब्रेशन दो, शुद्ध वाइब्रेशन दो, नेगेटिव नहीं सोचो उस वक्त। इतना बड़ा हथियार बाबा ने हमें दिया है, आप साइलेंस रहेंगे तो आप ही वो बोल बोल करके थक करके चले जाने वाला है। चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा? वो भी चुप हो जाएगा, 5 मिनट ज्यादा बोलेगा, 10 मिनट बोलेगा, फिर जब आप उसको ताली ही नहीं दे रहे हैं तो कितना करता रहेगा, कितना करता रहेगा? इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मुख में मुलहरा डाल दो और स्थिति की सुरक्षा करो। अपनी स्थिति की सेफ्टी का साधन, अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए ये सबसे उत्तम साधन है ना? साइलेंस में हो जाना माना फुल स्टॉप, अपना भी व्यर्थ फुल स्टॉप, व्यर्थ नहीं चलाना है, साइलेंस, और उसके प्रति शुभ भावना, साइलेंस, स्वीट वाइब्रेशंस देना। कितनी सुंदर बाबा ने हमें विधि बताई है, लेकिन अगर हम साइलेंस नहीं हो सके, अंदर में हलचल का तूफान चलने लगा तो क्या होगा? हाँ, काम भी बिगाड़ेंगे, अपनी स्थिति भी बिगाड़ेंगे, रिश्ता भी बिगाड़ेंगे, और बहुत कुछ बिगड़ जाएगा उसमें। बिगड़ता है कि नहीं? अनुभवी है, सभी अनुभवी है। इसीलिए बाबा कहते हैं मुख में मुलरा डाल दो, बच्चे चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, ओम शांति कर लो। ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा, ये भी शांत स्वरूप आत्मा, ये स्मृति स्वरूप हो जाओ, ओम शांति के स्मृति स्वरूप हो जाओ, है ना? ये प्रैक्टिकल जो बाबा ने हमें बताई है बातें, हमारी अवस्था की सुरक्षा के लिए। तो ये 5 स हमारी स्थिति की सुरक्षा करता है। जितना स्वरक्षक बनेंगे, हम स्वतः यज्ञ रक्षक बनते जाएंगे। अगर स्वरक्षक नहीं बने तो यज्ञ रक्षक कैसे बनेंगे? इतना बड़ा बाबा का बेहद का यज्ञ है, यज्ञ की रक्षा कैसे करेंगे, है ना? इसीलिए बाबा कहते पहले स्वरक्षक बनो। इसलिए आज मैंने खाली स्वरक्षक की बातें सुनाई, यज्ञ रक्षक कैसे बनना है उसके लिए और 4 बातें हैं, लेकिन अब समय हमारा यहां तक है, ठीक है? तो यज्ञ रक्षक भी बनना है, कभी आगे उसी के ऊपर क्लास कराएंगे कि स्वरक्षक के साथ यज्ञ रक्षक कैसे बनना है, ठीक है? बाबा के बेहद के यज्ञ में हम है, सभी एक ही किले के अंदर है। हाँ, अभी तो योग का टाइम हो गया ना, अभी इसलिए शॉर्ट में मैं अगर टाइटल खाली बता देती हूँ, उसके ऊपर आप लोग वर्कशॉप करना, या उसके ऊपर आप लोग जो करो, होमवर्क करो या जो भी करो। बाबा हमेशा यज्ञ रक्षक बनने के लिए कहते हैं, एक नामी, एक नामी, इकोनॉमी, एक व्रता है ना, और एकाग्रता। ये चार बातों के ऊपर आप मनन करना, तब यज्ञ रक्षक बनते हैं। एक नामी, इकोनॉमी, यज्ञ चलाते हैं हम सभी तो इकोनॉमी से चलाते हैं ना, तो एक नामी एक बाबा है ना, तो एक नामी इकोनॉमी, एक व्रता और एक एकाग्रता है ना। वर्कशॉप कर लेंगे आप लोग सभी इसके ऊपर, आपस में चिंतन भी करना, मनन भी करना, पॉइंट्स निकालना, और बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। ठीक है, तो ये चार बातें बता दें।
ओम शांति। उषा बहन आपका दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। हमें पता है नीचे शिविर का ग्रुप भी चल रहा है,
शिविर का ग्रुप तो चल ही रहा है,
और कल आपको दिल्ली भी जाना है, गीता के भगवान के ट्रेनिंग के लिए। तो इसके बीच हम सब के बीच आकर विशेष,
आप भाग्यशाली हो, आपको मिल गया क्लास है ना।
मुझे पता है शिविर में गीता का भगवान नहीं ले रही हो आप।
नहीं, कल नहीं होगा
ना, बोला कि यहाँ हमको टाइम दिया।
आज शाम को कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऊपर वालों को टाइम दिया है, इसीलिए नीचे वालों को एक क्लास मिल गया, ये बहुत हो गया। अभी कल इसीलिए सुबह 6 बजे निकलना है, क्योंकि ट्रेन की टिकट नहीं मिली, इसीलिए हमको बाई रोड जाना पड़ेगा। और परसों सुबह सुबह वहाँ तालकटोरा में प्रोग्राम भी है, और फिर गीता के भगवान की ट्रेनिंग चलेगी 14, 15, 16। तो इसीलिए जो है जाना है, तो इसीलिए आप सबसे छुट्टी भी लेते हैं, है ना। और आप सबकी शुभावना शुभकामना लेकर के हम
सब की तरफ से गुड लक है कार्यक्रम के लिए, और आप समान अनेक आत्माओं को तैयार करने के लिए। चलो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, और उसके बाद हमारा नुमा शाम का योग चलेगा। इसीलिए हम यहीं पर बैठकर उसी एकाग्रता से, उसी साइलेंस से यहीं पर रहेंगे। हम कितने लकी हैं जो इतना टाइम हमको उषा बहन का मिल गया।
कल शाम को 4 बजे बेंगलोर से आई हूँ। ऐसे मैं बैंगलोर में गई थी, बैंगलोर में टीचर्स की भट्टी थी, उन्होंने सारे जोन की टीचर्स को बुला के रखा था, और कहा नहीं टीचर्स को आप क्लास कराओ, तो पूरी भट्टी उनकी कराई। और फिर बैंगलोर से बॉम्बे गई आते वक्त, क्योंकि डायरेक्ट टिकट नहीं मिली तो वाया बॉम्बे आना पड़ा। तो जब बॉम्बे गई तो मैंने कहा चलो दादी से मिलना, ये तो बाबा ने लॉटरी दे दी, टिकट न मिलना इसमें भी कल्याण, के लॉटरी मिल गई। तो दादी को परसों ही रात को सेंटर पर ले आए, तो इसीलिए दादी से मिलना भी हो गया। और दादी बहुत अच्छे, सबकी शुभ भावना योग के बल से बहुत अच्छी होती जा रही है। खाली परसों ही लाए थे वहां से हॉस्पिटल से, तो थोड़ा एक्जर्शन शरीर को पड़ा, तो उस कारण से कल थोड़ा परसों थोड़ा डायरिया हो गया था, लेकिन फिर भी दादी बहुत अच्छी है, ठीक है। व्हीलचेयर पर बाहर घूमती है, ले आते हैं दादी को, बिठाते हैं, और बहुत अच्छी तरह से दादी की हेल्थ अभी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इसलिए ये भी एक लॉटरी लग गई कि बीच में बॉम्बे जाना हुआ तो मैंने पूछा नीलूबेन से कि आ सकती हूँ, तो कहा वैसे हम किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर है, लेकिन चलो आप आई हो तो भले आ जाओ। तो अच्छी तरह से 5 मिनट ही कहा मिलना होगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, बस दर्शन भी कर लेते हैं, तो अभी तो दादियां दर्शनीय मुहूर्त ही हो गई है, तो इसीलिए दर्शन मिल गया ये भी तो बहुत है। तो इसीलिए बस दादी को मिल करके फिर कल सुबह निकले वहां से फ्लाइट से, और फिर बॉम्बे से अहमदाबाद आए, और शाम को 4 बजे तक यहाँ पहुंचे शांतिवन। शाम का कल एक उद्घाटन सत्र था, आज सवेरे कराया, शाम का इधर कराया और कल सुबह निकल जाएंगे फिर दिल्ली के लिए। ओम शांति।
प्रभु इतना है प्यारा।